लेक्चर नंबर 753 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं
नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सवसाहूणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पते गोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुदकेवलीमणिरम्।
यह कुंदकुंदाचार्य भगवान का समय सार उसके सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के हम कलश नंबर 272 के बाद जो 220 गाथा नंबर 272 उसके बाद 220 का कलश भी देखा था। अब उसके आगे 221 नंबर का कलश हम देखने जा रहे हैं।
नंबर 3
हम पृष्ठ क्रमांक 3 पर आए हैं।
रथोद्धता
अभी हम पढ़ेंगे। रथोद्धता
राग जन्मनि निमित्ततां पर द्रव्यमेव कलयन्ति हेतु ते उत्तरन्ति नहि मोहवाहिनीं शुद्ध बोध विधुरांध बुद्धया।
इसका अर्थ देखते हैं नीचे सबसे। ये तु राग जन्मनि परद्रव्यम एव निमित्तताम कलयंती। राग जन्मनि यानी राग के जन्म में, राग की उत्पत्ति में, ये यानी जो लोग परद्रव्यम एव परद्रव्य को ही निमित्तताम कलयंती, निमित्तपना मानते हैं, जानते हैं, मानते हैं जो कुछ। इसका अर्थ क्या लिखा? जेओ राग नी उत्पत्ति मा परद्रव्य नुज निमित्तपणु एटले कारणपणु माने छे। परद्रव्य से ही मुझे राग हुआ, निमित्तता ने निमित्त कारण मानते ऐसा भी नहीं। देखो निमित्तक यानी कारण, यानी उसी के कारण हुआ ऐसा जो मानते हैं। ये उपादान कारण और निमित्त कारण में से निमित्त कारण मानते ऐसी बात नहीं है। कारण का एक नाम है निमित्त, उसके निमित्त से हुआ यानी उसके कारण हुआ, इस अर्थ में यह निमित्त शब्द आया है। नहीं समझे? परद्रव्य वहां निमित्त रूप से रहता है, वो कुछ नहीं करता, वो बात यहां नहीं मान रहा। ये जीव क्या मान रहा है? उसी के कारण मुझे राग द्वेष हो रहा है। जो लगे ना एव परद्रव्यम एव निमित्तता ने कारणपना, पोतानु काई कारणपणु मानता नथी लिखा है ना। ऐसा नहीं कि मैं उपादान और वो निमित्त, ऐसा वाला निमित्त नहीं यहाँ लेना। निमित्तता ने कारण पना, परद्रव्य से ही मुझे राग द्वेष होते हैं ऐसा जो मानता है ते उसको अभी क्या है बिरुदावली, जिसको डिग्री मिलती है ना। अब यहाँ कौन सी डिग्री देते हैं? ते शुद्ध बोध विधुर अंध बुद्ध, यहाँ बड़ा नाम दिया। कैसे वे के जेमनी बुद्धि शुद्ध ज्ञान रहित, शुद्ध बोध यानी शुद्ध ज्ञान, बोध यानी ज्ञान, और उससे वो विदुर हो गए। विदुर कब कहते हैं? ये विधवा और विदुर कब कहते हैं? जिसकी पत्नी मर गई है वो विदुर हो गया, वैसे ही इनका शुद्ध बोध नष्ट हो गया है। तो शुद्ध जेमनी बुद्धि, क्या कहा? जेमनी बुद्धि शुद्ध ज्ञान रहित हो गई। कैसी? और शुद्ध बोध विदुर अंध बुद्धया, कि जिनकी बुद्धि शुद्ध ज्ञान रहित हो गई है और अंध है। ये बुद्धि के लिए दो विशेषण दिए, शुद्ध ज्ञान रहित और अंध, ऐसी जिनकी बुद्धि है। एवा अर्थात जेमनी बुद्धि शुद्ध नैना विषयभूत शुद्ध आत्मस्वरूपना ज्ञान थी रहित अंध छे। ऐसे मोह वाहिनीम न ही उत्तरंती, मोह नदी ने उतरी सकता नथी, उतरी सकता नथी ने मोह नदी को पार नहीं कर सकते, यानी उसी में डूबे रहते हैं। फिर पढ़ते हैं, जेओ रागनी उत्पत्ति मा परद्रव्यनु निमित्तपणु एटले कारणपणु माने छे, पोतानु काई कारणपणु मानता नथी, तेवो जेमनी बुद्धि शुद्ध ज्ञान रहित अंध छे, एवा अर्थात जेमनी बुद्धि शुद्ध नैना विषयभूत शुद्ध आत्मस्वरूपना ज्ञान थी रहित अंध छे, एवा एवा कौन, एवा तेओ ते जीवो मोह नदी ने उतरी सकता नथी। भावार्थ, शुद्ध नयनो विषय आत्मा अनंत शक्ति वालो चैतन्य चमत्कार मात्र नित्य अभेद एक छे। जब शुद्ध नय कहते हैं तो जब आत्मा कैसा है हम सीखते हैं शुरू में, तो भेदों के द्वारा उसको समझाने में आता है। अब भेद के द्वारा आत्मा कैसा है ऐसा समझने पर उन भेदों की दृष्टि छोड़ दी जाती है और अभेद ऐसे आत्मा की दृष्टि की जाती है। इसको कहते हैं शुद्ध नय का विषय। यदि भेद करेंगे तो अशुद्ध नय का विषय हो जाएगा, वो है नहीं, वो नहीं है। किसी अपेक्षा से भेद करके समझाने में भी आता है, परंतु यहाँ प्रयोजन है हमें आत्मा का अनुभव करना। तो यहाँ क्या करना है, शुद्ध नयनो विषय आत्मा ये कैसा है, अनंत शक्ति वालों, अभी वो अनंतता पर नहीं लक्ष्य देना है, वो अनंत भेदों पर नहीं लक्ष्य देना है। भेदों पर लक्ष्य जाएगा तो अशुद्ध नय का विषय हो जाएगा। अनंत शक्ति का एक अखंड पिंड, इस तरह से एक पर दृष्टि, अभेद पर दृष्टि केंद्रित करना है। चैतन्य चमत्कार मात्र नित्य अभेद एक छे। जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो क्या भेद नहीं है, तो क्या पर्याय नहीं है, तो क्या अनंत गुण नहीं है, असंख्यात प्रदेश नहीं है। जिसकी बात कर रहे उसको नहीं सुन रहे, और वो है क्या नहीं उसकी चर्चा, क्योंकि हमें डर है कहीं वो पर्याय छूट नहीं जाए। सब कुछ है, जैसा हमने पहले भेद से जाना है ऐसा सब कुछ है, परंतु अभी उसका उसको गौण करना है। और अभेद की दृष्टि में वे भेद दिखाई नहीं देते। हमने भी चश्मा कौन सा पहना है, अभेद वाला, अभेद को देखने का चश्मा पहना है, उस दृष्टि से देखने पर हमें भेद दिखाई नहीं देते। ये नय का विषय है। प्रमाण के विषय में भेदाभेदात्मक आत्मा स्वरूप जैसा है वैसा जान लिया है हमने, नय उसी को कहते हैं। प्रमाण से जाने हुए वस्तु के किसी एक अंश में उस अंश रूप पूरी वस्तु देखना। अभी जब हम शुद्ध नय से वस्तु को देख रहे हैं, पहले हमने भेदों से और अभेद की सब चर्चा हो गई, अब हम शुद्ध नय से देखते हैं ने वस्तु कैसी दिखाई देती है, अभेद दिखाई देती है। एक छे, ते पोताना ज अपराध थी राग द्वेष रूपे परिणमे छे। शुद्ध नय का विषय जो बताया है, अभेद अखंड नित्य शुद्ध आत्मा जो है, अपने ही अपराध से राग द्वेष रूप परिणमता है। एवं नथी के जेम निमित्तभूत परिद्रव्य परद्रव्य परिणाम आवे तेम आत्मा परिणमे छे। अन्य द्रव्य परिणाम आएगा वैसा आत्मा को परिणमना पड़े, ऐसी पराधीनता है नहीं, किसी द्रव्य में नहीं है। अने तेमा आत्मानो काय पुरुषार्थ ज नथी, एवं नथी, ये पहले लगा दिया। क्या कहते हैं, एवं नथी के जेम निमित्तभूत परद्रव्य परिणाम आवे तेम आत्मा परिणमे, अने तेमा आत्मानो काय पुरुषार्थ ज नथी, यानी उसमें पुरुषार्थ नहीं, ये बात नहीं है। तो क्या अर्थ हुआ इसका, पुरुषार्थ है किसमें, किसमें पुरुषार्थ है, काहे का पुरुषार्थ है। हाँ, वो विकार में भी पुरुषार्थ कर रहा है, आत्मा का पुरुषार्थ है। हाँ, ऐसा भले वो उंधा है सीधा है, उसकी नहीं बात चल रही, वो आत्मा, क्योंकि हर समय के पर्याय में ये पांच समवाय लगते हैं ना, उसमें वो आत्मा के पुरुषार्थ से वो परिणमित हो रहा है। आओ आत्माना स्वरूप नु ज्ञान जेमने नथी, इसका जिसको स्वीकार नहीं है ते वो एम माने छे के परद्रव्य आत्मा ने जेम परिणमावे तेम आत्मा परिणमे छे। बोलते भी है क्या करे, कर्म जैसा रखेंगे वैसा रखना रहना पड़ता है, है? कर्म के अधीन होकर उसका ऐसा उदय चल रहा है, अभी हम क्या करें, अपने को दुखी अनुभव कर रहे हैं कर्म के उदय जैसा। आओ माननारा मोह रूपी नदी ने उतरी शकता नथी, अथवा मोहनी सेना ने हरावी शकता नथी। मोह वाहिनी कहा ना, दो प्रकार से उसकी नदी और उस सेना, ऐसे दो अर्थ लिए। तेमने राग द्वेष मटता नथी, कारण ते राग द्वेष करवामा जो पोताने पुरुषार्थ होए तो ज तेमने मटाड़वामा पण होए। क्या कहते हैं, राग द्वेष यदि अपने पुरुषार्थ से किए है तो ही उसके मिटाने का पुरुषार्थ भी स्वयं ही कर सकता है। यदि दूसरे ने राग द्वेष कराए है तो दूसरे को इलाज करना पड़ेगा, तो हम पराधीन हो गए। क्यों, कोई मान लेते एक्स हमको राग द्वेष करता है तो फिर वो एक्स को कुछ ठीक करना पड़ेगा या उसको हटाना पड़ेगा, उसको नष्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे न्याय देते हैं ना छोटे छोटे वाक्यों में। ये भावार्थ लिखने वाले कौन है मालूम है ना, हाँ जयचंद जी छाबड़ा, पंडित जयचंद जी छाबड़ा। देखिए राग द्वेष करवामा जो पोताने पुरुषार्थ होए तो ज तेमने मटाड़वामा पण होए, परंतु जो परना कराव्याज राग द्वेष थता होए तो पर तो राग द्वेष कराव्याज करे, पर के कारण अगर होता है तो पर तो करता ही रहे कराता ही रहेगा, क्योंकि वो राग द्वेष उत्पन्न कराता है ना, तो परद्रव्य हमें तो राग द्वेष कराता रहेगा। त्या आत्मा तेमने क्यांथी मटाड़ी शके, यदि परद्रव्य राग द्वेष उत्पन्न करता है तो आत्मा में वो मिटाने का भी कोई उपाय नहीं रहेगा। माटे राग द्वेष पोताना कर्या थाय छे अने पोताना मटाड़ा मटे छे एम कथनचित मानू ते सम्यक ज्ञान छे। कथनचित क्यों लिखा, क्योंकि किसी अपेक्षा से इसकी बात है, परंतु शुद्ध नय से तो हमें उसमें तो राग द्वेष दिखाई भी नहीं देगा, इसीलिए कथनचित शब्द लगाया।
आगे का भी पढ़ लो।
हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण अने शब्दादि रूपे परिणमता पुद्गलो। क्या कहते हैं, ये परिणमन किसका है, पुद्गल का है। स्पर्श रस गंध वर्ण इन गुणों की जो पर्याय होती है, और शब्द ये क्या है, ये कैसी पर्याय है, स्पर्श रस गंध वर्ण कैसी पर्याय है और शब्द कैसी पर्याय है, नहीं समझे। स्पर्श रस गंध वर्ण ये तो गुण है, और उन गुणों की पर्याय को क्या कहेंगे, हम अर्थ पर्याय कहेंगे। और शब्द क्या है, स्कंद है, अनेक द्रव्यों की मिली हुई पर्याय है, वो तो भाषा वर्गणा से मिला हुआ शब्द ये परिणमन हुआ है, वो तो स्कंद रूप परिणमन है, स्कंद है वो। स्पर्श रस अर्थ नहीं कहेंगे उसको, द्रव्य पर्याय कहेंगे, ये गुण पर्याय हुई और वो द्रव्य पर्याय हो जाएगी, अनेक द्रव्यों की मिली जुली पर्याय, हाँ समान जाति द्रव्य पर, वो तो गुणों की है, गुण पर्याय है और वो तो द्रव्य पर्याय है। देखो ये क्या है, गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय क्या होता है, कभी सुना है, हाँ वीरेश भाई, गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय क्या होता है, सुना है कभी, नहीं सुना है। देखो हमने देखा ना, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और हर एक गुण अपने अपने परिणमन निरंतर चलता है, उसका परिणमन प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है, अपना अपना परिणमन करता है और वो निरंतर चलता रहता है। ये तो बात हमने बहुत बार सुनी है, अभी अभी देखी ना सिद्धांत प्रवेशिका में, क्यों निरंतर परिणमता है, हाँ कौन से गुण के कारण, याद है आपको, नहीं
परिणमन क्यों
निरंतर, निरंतर क्यों होता है, हाँ द्रव्यत्व गुण, उसका निरंतर अपना अपना प्रयोजन भूत क्यों करता है तो वस्तुत्व गुण, और निरंतर क्यों परिणमन करता है तो द्रव्यत्व गुण। तो यहां जो बात हम गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय की बात चल रही थी, तो जो स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है, तो स्पर्श गुण की हमने 8 पर्याय देखी थी। बोलो मिलिंद भाई। हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम और ठंडा गरम। तो ये जो 8 प्रकार के हमने पर्याय देखी है, वैसे रस की गंध की वर्ण की जो है उसको हम गुण पर्याय कहेंगे, गुणों की पर्याय। अब ऐसा है, स्कंद ये भी पर्याय है, वो कैसी पर्याय है, तो अनेक पुद्गलों का बंध होता है और उसको हम स्कंद कहते हैं, तो उसको कहेंगे द्रव्य पर्याय। तो स्कंद में सभी पुद्गल परमाणु है, अनेक जीवों की मिलकर कौन सी पर्याय होती होगी, कोई द्रव्य पर्याय होगी कि नहीं होगी, अनेक जीवों की मिलकर समान जाति पर्याय अनेक जीवों की होगी कि नहीं होगी। अभी हमने पुद्गलों की देखी, जीवों की नहीं हो सकती। अच्छा, हमने सोचा कि एक निगोद शरीर में इतने जीव रहते तो कोई पर्याय होती होगी उनकी। ये पुद्गलों में ऐसी योग्यता है, वो जुड़े और फिर गले, पुद और गल, ये पुद्गल का स्वभाव। तो स्कंद होता है अनेक द्रव्यों की, वो सभी द्रव्य कैसे एक समान जाति है, पुद्गल जाति के अनेक द्रव्य और उनका बंध हुआ है, उसको स्कंद कहते हैं, उसको कहेंगे द्रव्य पर्याय। अब यहाँ एक जीव और अनेक वो कारमान शरीर हो, तेजस शरीर हो, स्कंद है, उनका जहां बंध होता है तो उसको कहेंगे असमान जातीय द्रव्य पर्याय, अनेक द्रव्यों की मिली जुली पर्याय। जैसे हमने कहा मनुष्य है, मनुष्य क्या है, एक जीव द्रव्य है, और उसके वो कारमान शरीर तेजस शरीर औदारिक शरीर जो कोई है, इनका अभी कुछ एक बंधन पिंड रूप हुआ है, तो उसको हम कहेंगे मनुष्य पर्याय। वो क्या हुई, असमान जातीय, एक जीव और अनंत पुद्गल, असमान जातीय द्रव्य पर्याय। और गुण पर्याय किसको कहा था, गुणों की पर्यायों को गुण पर्याय कहा था, और अनेक द्रव्यों की मिली जुली पर्याय को द्रव्य पर्याय कहेंगे। उसकी बात यहाँ क्यों आई, क्योंकि हमने जो वाक्य अभी पढ़ा था, स्पर्श रस गंध वर्ण अने शब्दादि रूपे परिणमता पुद्गलो, स्पर्शादि रूप परिणम तो यानी स्पर्श गुण की उसकी पर्याय, पुद्गल द्रव्य है, स्पर्श रस गंध वर्ण उसके गुण है और उनकी पर्याय हर समय चलती है, तो उसको हम उन गुणों की पर्याय कहेंगे। और शब्द क्या हुआ, अनेक पुद्गलों की मिली जुली, वो द्रव्य पर्याय है, स्कंद है,
समान
तो जाती द्रव्य पर्याय, तो पुद्गल ही उस रूप परिणमता है। आत्मा ने काय कहता नथी के तू हमने जान, क्योंकि वो तो इस विश्व का एक द्रव्य यानी वन ऑफ द द्रव्य जाति अपेक्षा पुद्गल द्रव्य जो है वो नहीं कहता कि तू मुझे जान। अने आत्मा पण पोताना स्थान थी छूटीने तेमने जानवा जतो नथी, शांति छुटे ने अपने वो असंख्यात प्रदेशों में से बाहर निकलकर किसी पुद्गल के यहाँ नहीं जाता जानने के लिए, वो तो अपने असंख्यात प्रदेश में ही रहता है और ज्ञान का परिणाम उसके अपने से होता है। वहाँ पुद्गल अपने में स्पर्श रसक अंध रूप परिणमित होते हैं, अब ये पुद्गल है वो अपने स्पर्श रसक अंध रूप से यहाँ परिणमित हुआ है, उसका अपने में परिणमन चल भी रहा है, और मैं स्वयं ज्ञान रूप हूँ, मेरे में मेरा वो ज्ञान का परिणमन चल रहा है, वो ज्ञान अपने में से छूटकर बाहर नहीं जाता है पुद्गलों को जानने के लिए। बनने तद्दन स्वतंत्रपणे पोत पोताना स्वभाव थीज परिणमे छे, ज्ञान अपने स्वभाव से परिणमता है, सामने पुद्गल अपने स्वभाव से परिणमता है, ज्ञान अपनी योग्यता से अपने में रहकर यथा योग्य अपने ज्ञेय को जानता है, वो किस ज्ञेय को जानना, वो भी ज्ञान के उसमें अंदर ही वो अंतर्भूत है, द्रव्य का स्वभाव है किस समय किस कौन सी पर्याय रूप से परिणमना, तो ज्ञान अपने स्वरूप स्वभाव रूप से जानन रूप से परिणमा है। फिर भी कहने के लिए हम क्या कहेंगे, उसने सामने जो गेय था उसको जाना, ये कथन में पराधीनता आई, ज्ञान के परिणमन में कोई पराधीनता नहीं आई है। तो कहते दोनों ही अपने अपने स्वतंत्र अपने अपने स्वभाव से परिणमित होते हैं, आम आत्मा પરપ્રત્યે ઉદાસીન, ઉદાસીન એટલે તટસ્થ, સંબંધ વિનાનો. ઉદાસીન એને મૂળ અટક કરે છે બેઠના, ઉસકો ઉદાસીન નહીં કહા, ઉદાસીન છે. તો પણ અજ્ઞાની જીવ સ્પર્શાદિકને સારા નરસા માનીને ક્યાં કહેતે, સ્પર્શાદિક મેં સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ, અરે કુછ ભી દેખ, એ વર્ણ અચ્છા, થોડા દૂસરા હોતા તો અચ્છા હૈ, અપના કુછ લેના દેના નહીં, અપની ભી વસ્તુ નહીં, જિસકો હમ અપની કહેતે હૈ. એસે સાડી ક્યુ પહેની, વો દૂસરા કલર કા પહેનના છે, યે ઇસકો શોભા નહીં દેતા, કિસી મેં કુછ કુછ નહીં હોતો ભી. તો ક્યા કહેતે હૈ કે અજ્ઞાની જીવ સ્પર્શાદિક, સ્પર્શાદિક મેં સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ સબ કુછ લે લેના, સારા નરસા માનીને, એ ઉસકી અપની કલ્પના હૈ. इस विश्व में अनंत पुद्गल परमाणु है, उसमें कौन से अच्छे और कौन से बुरे हैं? पुद्गल में दो जाति होगी ना, अच्छी और नर, यह सारा नरसा लिखा है. एक जाति है, सब अच्छे के सब बुरे है, क्या है? ये तो पुद्गल पुद्गल है, उसमें अच्छा बुरा क्या है, पर हमने कभी ऐसा माना ही नहीं है.
हमने पलटी खाई, माना नहीं.
ये जो पैसे रूप परिणमित पुद्गल वो तो अच्छा है कि नहीं? समान जाति द्रव्य पर्याय जो पैसे के रूप में परिणमित हुआ है, तो मानी ने रागी द्वेषी थाई छे, ते तेनु अज्ञान छे. पुद्गल अपने में परिणमित हो रहा है, जीव अपने में जानना जानना रूप परिणमित हुआ है, फिर भी पुद्गल का कोई परिणमन अच्छा और कोई परिणमन बुरा ऐसा मानकर ये स्वयं जीव अज्ञानी हो रहा है, ये उसका अज्ञान है. आवा अर्थनी गाथाओं कहे छे, ये तो भी आगे की बात बताएंगे. अब यहाँ हम प्रवचन देखते हैं, 23 नंबर के पृष्ठ पर.
23 हमें आज अर्थ दृढ़ करवाने अने आगरना कथन ने सूचना કરવાને કાવ્ય કહે છે. શ્લોકાર્થ ઉપરનું પ્રવચન. યે તુ રાગ જન્મની પરદ્રવ્યમ એવ નિમિત્તતામ કલયંતી, જેવો રાગની ઉત્પત્તિમાં પરદ્રવ્યનું જ નિમિત્તપણું માને છે, યાને એ પરદ્રવ્ય સે હી કાર્ય હોતા હૈ, એસા યે માનને વાલો હૈ. પોતાનું કઈ કારણપણું માનતા નથી, यानी ये राग मेरे से मेरे में हो रहा है, इस बात को एग्री नहीं होते हैं. ते केवा छे, ते शुद्ध बोध विदुरहा अंध बुद्धया, ते वो जेमनी बुद्धि शुद्ध ज्ञान रहित अंध छे एवा. देखो ऐसी बात होती है ना, जब किसी पत्नी का पति मर जाए तो अपने को बेसहारा मानती है, कोई पति अपनी पत्नी जल्दी खत्म हो जाए वो भी अपने को अकेला अकेला महसूस करता है, बेसहारा मानता है. तो ये कैसा निकला कि जिसकी ज्ञान जो बुद्धि है वही उसको छोड़ के गई है, तो ज्ञान रहित हो गया, विदुर हो गया, ज्ञान से विदुर हो गया, ऐसा कहते हैं. देखो क्या कहा, ते वो जेमनी बुद्धि शुद्ध ज्ञान रहित अंध छे एवा, अर्थात जेमनी बुद्धि शुद्ध नैना विषयभूत शुद्ध आत्मस्वरूपना ज्ञान थी रहित अंध छे, यानी जिसने आत्मा का अनुभव किया नहीं है, ऐसे जीव की बात भी है. मोह वाहिनी नहीं उत्तरंती, मोह नदी ने उतरी शक्ता नथी, यानी उसको क्रॉस नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल पाते. પર્યાય માં જે અસંખ્યાત પ્રકારે રાગ થાય તેમાં જેવો પરદ્રવ્યનું જ કારણપણું માને છે, તેમની બુદ્ધિ શુદ્ધ જ્ઞાનથી રહિત અંધ છે, અને તેઓ મોહ નદીને પાર ઉતરી શકતા નથી. અહીં રાગ શબ્દે રાગ અને દ્વેષ બંને લેવા, કઈ કઈ લોકો ક્યાં શબ્દશાહ હોતે ને, ઉસી કો પકડતે હૈ. ये शब्दशाह यानी क्या बता दो. मैं एक पति पत्नी थे, है थे कहो ना, अपना क्या जाता है. तो वो पति रोज ऑफिस से लेट आते थे, वो करीबन 6:45 तो वो तो सूर्य का अस्त होने के पहले खाना खा लेते थे, लेकिन ये भारतीय नारी थी तो उसने ऐसा सोचा कि सूरज कभी भी डूबे, मेरा पति तो 6 बजे खाना खा लेता है, मैं 7 बजे तक की लिमिट रखूंगी। सूर्यास्त के पहले खाना था उसे, लेकिन उसको परसने के बाद स्वयं बैठेगी ना, तो उन्होंने सोचा कि 7 बजे तक मेरा टाइम है। अभी क्या हो गया, वो घूमते 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 ऐसे देश में पहुंची कि जहां रात को 10 बजे सूर्यास्त होता है, अपने रात के 10 यानी वहां के भी 10। ऐसा कहां होता है डॉक्टर? इंग्लैंड में होता है। हाँ, तो अभी तो उसने 7 बजे के पहले मुझे खाना चाहिए, यही पकड़ के बैठे। अब वहां से घूमते घूमते अन्य जगह पहुंचे, वहां दिन में 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है, तो फिर 7 बजे कैसा खावे? ख्याल में आया, क्योंकि 7 बजे तक तो लिमिट रखी है, तो रात को 7 बजे खावे यानी एज गुड एज रात का 10 बजे खाने जितना अंधेरा हो जाता है वहां पर। ये फिनिक्स में ऐसे ही होता है, 4 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और शिकागो में भी देखा ना, शिकागो में भी 3:30 बजे। यानी मैं क्या कहता हूँ, ये हमने जो कोई नक्की किया है, कौन सा, कि मेरा पति यानी सूर्यास्त के पहले वो खा लेवे और उसके बाद में मैं तो खाऊं, तो अगर जहां जाता है वहां रात को 10 बजे अंधेरा होता है, तो 7 बजे खाने में या 8 बजे खाने में तेरे को क्या तकलीफ है? सूर्यास्त के पहले खा रहे ना आप? नहीं, मैंने तो ऐसी कसम खाई है कि 7 बजे ही मैं उसके पहले खाऊंगी। तो ये शब्द शाह अर्थ लेना हो गया। मूल क्या है कि सूर्योदय के पहले, सूर्यास्त के पहले हमारा भोजन होना चाहिए। अब आप ऐसे देश में जाओ वहां रात को 10 बजे सूरज डूबे तो क्या कर सकते हैं आप? लेकिन नहीं, तो मैंने वो कथा सुनाई थी ना, तीन पागलों की, वो महाराज के पास जाते हैं, बोलते हमें कोई नेम दे, वो बोलते छान के पानी पियो जाओ, कथा बताई थी ना आपको, ऐसा हो गया। ये बिल्कुल शब्दशः ऐसा अर्थ लेना, ख्याल में, ये हमने बताई थी ना अपने देवलाली के शिविर में, भूल गए? अच्छा, आप हमारे मिली भाई और एक कोई, तीन जन ऐसे जा रहे थे एक गांव से दूसरे गांव तक। हाँ, अभी अभी देखा देखा, तो महाराज साहब के पास गए, साहब हमको कोई नेम दो, तो जाओ पानी छान के पानी पीना। गए दौड़ते दौड़ते आगे गए, तो वहां एक कुआं मिला, प्यास लगी थी, पानी निकाला और उन्होंने छन्ने से पानी छान लिया। फिर एक, तुम नहीं पानी पीने का? क्यों? मुझे नियम दिया है, तुमको नहीं दिया। अरे नहीं साहब, वो महाराज तो मेरे तरफ देख देख के दे रहे थे। अरे मैंने पूछा था ना, मैं ही पीऊंगा, तुम दोनों हट जाओ। तीनों में झगड़ा चालू हो गया। तो बोले क्या करें अभी? तो बोले चलो वापस महाराज के पास। गए उनके पास, साहब ऐसा ऐसा हो गया, अब आपने किसको नियम दिया? तो महाराज समझ गए ये हमारे मिली कौन से क्वालिटी का है। बोले कि तुम्हारे में से अधिक मूर्ख होगा उसको मैंने दी। ऐसा तो अपनी मूर्खता की कथा चालू की उन्होंने। फिर वो बहुत लंबी बात है, वही छोड़ देते हैं। तो ये शब्द शाह अर्थ लेना, ख्याल में आया बेन? तो यहाँ कौन सी बात हो रही है कि आई राग शब्दे रागने द्वेष बनने लेवा, यानी यहाँ आपने राग की बात की ना, तो द्वेष की कहाँ बात की? ऐसा शब्दशः अर्थ लेना, ऐसा मत करना। वीत राग होते हैं तो उनके राग निकल गया है तो द्वेष तो होगा कि नहीं, ऐसा मानने वाले आर्ग्यूमेंट करने वाले भी जीव मिलते हैं। आपको भी मिला था कोई? आप तो हंस रहे बहुत दिल से। राग अर्थात माया ने लोभ, अने द्वेष अर्थात क्रोध अने मान, एम राग द्वेष पुण्य पाप क्रोध मान माया लोभ इत्यादि भावनी पर्याय में उत्पत्ति थाय, એમાં પરદ્રવ્યનું જ જેવો નિમિત્તપણું એટલે કારણપણું માને છે તેવો અજ્ઞાની છે, દીર્ઘ સંસારી છે. યે દીર્ઘ સંસારી કિસ પર સે ઉન્હોને યે કન્ક્લુઝન નિકાલા? હા પ્રેરણાબેન, નહી હા કોણ બતાવે? આ બતાવે જો મિથ્યા દ્રષ્ટિ હૈ જિસકી માન્યતા ખોટી હૈ, માન્યતા કોણ સી ખોટી હૈ કે પરદ્રવ્ય સે યહાં રાગ હો રહા હૈ, એસા અજ્ઞાની બતાયે ના. મિથ્યા દ્રષ્ટિ હૈ તો દીર્ઘ સંસારી હૈ, ક્યોંકિ ઉસકી માન્યતા જબ તક નહી હટેગી ઇસલિયે ઉસકો દીર્ઘ સંસારી કહા. દેખો સ્વામીજી લિખતે હૈ બાત બાત મેં એકદમ ડાયરેક્ટ કન્ક્લુઝન નિકાલતે હૈ, તો એસા ક્યું કહે રહે હૈ યે હમેં સમજના ચાહિયે. રાગ આત્માનો સ્વભાવ નથી, માટે પરના કારણે જીવને રાગ થાય છે એમ માને, એ ઉસકી ભૂલે ના, તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ હો ગયા વો. તે શુદ્ધ જ્ઞાનથી રહિત અંધ છે અને તે સંસાર પાર કરી શકતો નથી, મોહ નદીને ઉતરી શકતા નથી. લિખા ના, તો જિસકે મોહ હૈ વો કોણ હૈ? દર્શન મોહ કી બાત, મતલબ મિથ્યાત્વ હૈ, મિથ્યા દ્રષ્ટિ. રાગ પર પદાર્થના લક્ષ્ય થાય છે એ ખરું, પણ પર પદાર્થ કઈ રાગનું સત્યાર્થ કારણ નથી, એ તો પર્યાય પરદ્રવ્યનું લક્ષ્ય કરે છે. એટલે આ જીવ પોતે એની પર્યાય પરદ્રવ્યનું લક્ષ્ય કરે છે, તેથી ત્યાં રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. એ ખાસ કરકે જો મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ હૈ ઉનકી અપેક્ષા સે એ કથન કિયા હૈ. કૌન સા? જબ યહ જીવ પર કે ઉપર યા પર્યાય કે ઉપર, દોનો તરફ લેના, અપના લક્ષ્ય કોન્સન્ટ્રેટેડ કરતા હૈ તો ઉસકો રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન હોતે હી હૈ. આત્મજ્ઞાની સંત મુનિવરને ત્રણ કષાયનો અભાવ છે, એક સંજ્વલન કષાય બાકી છે. આહા હા, તે રાગ કર્મથી થાય છે એમ કોઈ માને તો તે અજ્ઞાની છે. ભાઈ અસંખ્ય પ્રકારે જે શુભાશુભ ભાવ થાય તેને કર્મ કરે છે એમ માને તે અજ્ઞાની છે, અને તે મોહ નદીને પાર કરી શકતો નથી, અર્થાત સંસારમાં જ ચિરકાળ રખડી મરે છે. દર્શન મોહની કર્મના નિમિત્તથી મિથ્યાત્વ થાય, ચારિત્ર મોહિનીના ઉદયના નિમિત્તે જીવને રાગ દ્વેષાદી થાય ઇત્યાદિ કથન ગોમઠસારમાં આવે છે. એવા કથન શાસ્ત્રોમાં છે ખરા, પણ ભાઈ એ તો વ્યવહાર નહીંથી નિમિત્તની મુખ્યતાથી કથન છે, કર્મ વિકારનું વાસ્તવિક કારણ છે એમ તેનો આશય નથી. તેનો એને એ જો એસે કથન જો કિયે ગયે હૈ ઉનકા, પણ જીવ સ્વયં વિકારને પર્યાયમાં ઉત્પન્ન કરે ત્યારે કોના લક્ષ્ય પરિણમ્યો છે એમ નિમિત્તનું ત્યાં જ્ઞાન કરાયું છે. બસ બીજી વાત, સમકીતી ધર્મી પુરુષ એમ જાણે છે કે હું તો શુદ્ધ ચેતના માત્ર વસ્તુ છું, વિકાર મારું સ્વરૂપ નથી, વિકાર મારું કર્તવ્ય નહીં, ને વિકાર મારું વ્યાપ્ય નહીં. યાને ક્યાં વિકાર મારું વ્યાપ્ય નહીં, એ કોઈ બતાવે ક્યાંક લિખના ચાહતે હૈ? હા, તો યહાં એ બતાના ચાહતે હૈ કે વિકાર કરને વાલા વ્યાપક મેં, ઓર યે વિકાર મેરા વ્યાપ્ય, યાને મેં કરતા ઓર યહ મેરા કાર્ય, એસા હૈ નહીં. એકચ્યુઅલી એક તરફ સે તો કહેતે કે રાગ તેરે મેં હૈ ઉત્પન્ન હોતા હૈ, ઉત્પન્ન હોતા હૈ વો પર્યાયગત સ્વભાવ હૈ, લેકિન ત્રિકાળ સ્વભાવ મેં વહ ઉસકા કાર્ય નહીં. લિખા ના ભાઈ, સમકીતી ધર્મી પુરુષ એમ જાણે છે કે હું તો શુદ્ધ ચેતના માત્ર વસ્તુ છું, દ્રવ્ય છું, વિકાર મારું સ્વરૂપ નહીં, અને વિકાર મારું કર્તવ્ય નહીં, યાને વહ મેરા કાર્ય ભી નહીં હૈ, ને વિકાર મારું વ્યાપ્ય નહીં હૈ, એટલે હું વ્યાપક અને એ મારું વ્યાપ્ય એમ નથી. તો ધર્મી પુરુષને જે વિકાર થાય તેમાં જડકર્મ વ્યાપક અને વિકારેનું વ્યાપ્ય એમ કરતા કર્માધિકારમાં આવ્યું છે ને? હા એવું છે, પણ એ તો ત્યાં સ્વભાવ દ્રષ્ટિની અપેક્ષા એ વાત છે, વિકાર કર્મથી થાય છે એમ એનો અર્થ નથી. રાગદ્વેષાદી વિકાર કર્મથી એટલે પરદ્રવ્યથી થાય એમ માને એને તો મૂળ અજ્ઞાની કયો છે. દોનો તરફ સે બાત બતા રહે, એક દફે ત્રિકાલી સ્વભાવ કે અપેક્ષા છે, એક દફે પર્યાય કે અપેક્ષા છે. ત્યાં તો એમ કહેવું છે કે જેને શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપનો અનુભવ થયો તે ધર્મી પુરુષની નિર્મળ દશામાં ચૈતન્ય સ્વભાવ વ્યાપક અને તે નિર્મળ દશા એનું વ્યાપ્ય છે, તેથી તે સ્વભાવ દ્રષ્ટિવંત પુરુષને પર્યાયમાં રાગ થાય તે અપરાધને બાહ્ય ગણીને કર્મ વ્યાપક અને રાગ એનું વ્યાપ્ય એમ ત્યાં કહ્યું છે. એ તો રાગ સ્વભાવની ચીજ નથી, રાગ સ્વભાવની ચીજ નથી અને ત્રિકાલી સ્વભાવ મેં રાગ ઉત્પન્ન કભી હોવે એસા કોઈ ગુણ હિ નહીં, કોઈ વૈસી સ્વભાવ હિ નહીં, અને તે કાઢી નાખવાની ચીજ છે. તે અપેક્ષાએ સમયસર ગાતા 75, 76, 77, 78માં એમ કહ્યું છે કે બાકી રાગ થાય છે તે અજ્ઞાનથી થતો પોતાનો જ અપરાધ છે, કર્મ કાંઈ તેનું કારણ નથી. એ પરદ્રવ્ય નહીં કારણ નહીં હૈ, પરદ્રવ્ય કે કારણ રાગ નહીં હોતા હૈ યે બતાને કે લિયે કરતા તું હી હૈ એસી વહાં બાત કહી હૈ, ક્યુંકિ અગર વો પુદગલ હી ઉસકો બનાતા હૈ તો ઇસકો કૌન સી ચિંતા રહી, ક્યુંકિ વો મેરા હૈ ને મેં કરતા નહીં, વો તો કર્મ કરાતે હૈ કરતા હૈ તો ઉસસે વો હટેગા હી નહીં, લેકિન તેરે હી અપરાધ સે યે બાત હો રહી હૈ. અબ યે મેરા વિકાર હૈ એસા ખ્યાલ મેં આવે તો ઉસસે દૂર હોને કી સોચે ના. इसलिए क्या कहा, नीचे से तीसरी लेनी है पैराग्राफ की, बाकी राग थाय छे ते अज्ञान थी थतो पोतानो ज अपराध छे, कर्म काय तेनु कारण नथी, ये बात बताई. अब कहते हैं कर्म तो निमित्त मात्र छे, माटे राग जड़ कर्म थी थाय એમ ત્યાં અર્થ નથી એમ યથાર્થ સમજવું. સમયસાર ગાથા 404ની ટીકામાં કહ્યું છે આ પ્રમાણે, જ્ઞાન જીવથી અભિન્ન હોવાથી જ્ઞાન જ સમ્યક દ્રષ્ટિ છે, જ્ઞાન જ સંયમ છે, જ્ઞાન જ અંગ પૂર્વ રૂપ સૂત્ર છે, જ્ઞાન જ ધર્મ અધર્મ અર્થાત પુણ્ય પાપ છે, જ્ઞાન જ પ્રવજ્ઞા એટલે દીક્ષા નિશ્ચય ચારિત્ર છે, એમ જ્ઞાનનો જીવ પર્યાયોની સાથે પણ અવ્યતિરેક નિશ્ચય સાધી દેખવો અર્થાત નિશ્ચય વડે સિદ્ધ થયેલો સમજવો અનુભવવો. એ 404 નંબર કી જો ગાથા હૈ, અભી થોડે હી દિન મેં આયેગી. ઇસકે પહેલે યે બતા રહે હૈ કે ઉધર એસા બતાયા હૈ કે જ્ઞાન ઓર आत्मा ये अभिन्न है, एक दूसरे से कभी जुदे नहीं होते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा के हरेक पर्याय में ज्ञान ज्ञान का चालू है ना कार्य, तो वह सम्यक दृष्टि भी जो है तो वह भी ज्ञान को ही सम्यक दृष्टि कहते, क्योंकि आत्मा और ज्ञान जुदे जुदे नहीं है. इस अपेक्षा को लेते हुए ये सारी बातें हमको बताइए. જો અહીં કહ્યું કે જ્ઞાન જ અર્થાત આત્મા જ પુણ્ય પાપ છે, જ્ઞાનીને જ્ઞાનમય ભાવ થાય તે વાત અત્યારે નથી, અહીં તો જ્ઞાની અર્થાત આત્મા તેની પર્યાયમાં જે પુણ્ય પાપના ભાવ થાય છે તે આત્મા જ છે, તે ભાવ આત્માના જ છે, નિમિત્તના એટલે જડકર્મના નથી એમ કહેવું છે. यानी परद्रव्य में वो नहीं हो रहे, तेरे ही स्वयं के कारण से हो रहे हैं, इसलिए पर्याय जैसा ही तू स्वयं है ऐसा कह रहे. आत्मा में राग द्वेषादि विकार थाय छे ते आत्मा ना जो परिणाम छे एम आई सिद्ध करवू छे. क्या 404 नंबर नी गाथा में
प्रव्रज्या चाहिए,
प्रव्रज्या व्र चाहिए ना,
जैसे प्र है वैसा व्र करना, व्रत में जो व्र होता है ना, प्रवज्जा नहीं प्रव्रज्जा। मुझे लगा जब ये आपने पढ़ा तभी इसलिए मैंने निकाल के देखा, प्रव्रज्जा चाहिए। यानी दीक्षा, प्रव्रज्जा यानी दीक्षा।
ज्ञानी ने लास्ट सेकंड लाइन, ज्ञानी ने जे व्यवहार आचरण रूप शुभभाव थाय ते राग छे दुख छे ते भाव आत्मा थी होता थी थाय छे परती नहीं निमित्त थी के कर्म थी नहीं। चौथा पांचवा गुणस्थान मा आर्त्र रुद्र ध्यान ना परिणाम थाय छे, परिणाम पन थाय छे, रुचि नथी छता थाय छे, ए भाव पाप छे पण ते थाय छे। अने आत्मानी अत्मानी हुआ वो आत्मा करना, अने आत्मानी पर्याय माज थाय छे, ते थाय छे पोताना कारणे, कर्मना कारणे नहीं, कर्मथी नहीं। तो सम्यक दृष्टि ने એટલે ધર્મી ને જ્ઞાનમય ભાવ હોય છે, વિકાર ભાવ હોતો નથી એમ કહ્યું છે ને, આ કહ્યું છે। પણ એ તો ભાઈ સ્વભાવની દ્રષ્ટિમાં વિકારને ગૌણ કરીને વાત કરી છે। એમ તો સમયસાર ગાથા 11 માં ન આવ્યું કે વ્યવહાર અભૂતાર્થ છે, અર્થાત પર્યાય માત્ર અભૂતાર્થ છે। एक शुद्ध आत्मा चैतन्य गण प्रभु भूतार्थ छे। भूतार्थ का अर्थ जो है पना, भूत याने विद्यमान है। आप कह रहे सत्यार्थ, वो दूसरा शब्द भी उसको भूतार्थ और सत्यार्थ ऐसा भी आता है। क्या कहा, एक शुद्ध आत्मा चैतन्य गण प्रभु भूतार्थ छे, ત્યાં તો પ્રમત્ત અપ્રમત્ત મોક્ષ માર્ગ અને કેવળ જ્ઞાન સહિતની સર્વ પર્યાયોને અભૂતાર્થ કહી, અસત્યાર્થ કહી। પણ કઈ અપેક્ષા હે, યાને વહાં જબ ત્રિકાલી ધ્રુવ સ્વભાવ કી હી બાત ચલની હૈ, તો યે અન્ય કોઈ ભેદ હૈ યા અન્ય કોઈ બાતે હૈ જો વ્યવહાર સે કહી જાતી હૈ, વો હૈ હી નહીં। પહેલે તો કહા હૈ ઓર બાદ મેં કહે વો હૈ હી નહીં, ક્યોંકિ ઉસ પર સે ઇસ જીવ કી દૃષ્ટિ હટકર વો ત્રિકાલી સ્વભાવ પર કોન્સન્ટ્રેટ હો જાય, ઇસ અપેક્ષા સી યહાં વો બાત ચલી થી। તો કહેતે મોક્ષ માર્ગ અને કેવળ જ્ઞાન સિંતી સર્વ પર્યાયોને અભૂતાર્થ કહી, અસત્યાર્થ કહી। પણ કઈ અપેક્ષા હે, ગૌણ કરીને તેને અભૂતાર્થ અવિદ્યમાન અને અસત્ય એટલે જૂઠી કહી છે। તો અભી જો હૈ હી નહીં ઉસકો ગૌણ કરને કા સવાલ હી કિધર હોગા, ખ્યાલ મેં। તો હૈ लेकिन उसको गौण कर सके, वह उसके तरफ नहीं देखना है, इसलिए उसको केवल अभूतार्थ यानी है नहीं इतना ही नहीं कहा, वो असत्यार्थ यानी वो बिल्कुल सत्य नहीं है, अविद्यमान यानी क्षति पदार्थ ने नथी एम केवू, अविद्यमान अने असत्य झूठी कही छे। द्रव्य त्रिकाली छे तेने मुख्य करीने तेने निश्चय कहीने તેનો જ આશ્રય કરાવવાના પ્રયોજનથી પર્યાય માત્રને ગૌણ કરી વ્યવહાર કહીને અભૂતાર્થ કહી છે। યા ક્યા કહેતે હૈ, યા કિસકો મુખ્ય ક્યા, તો દૂસરી લાઈન મેં લિખાઈ દીધી દ્રવ્ય ત્રિકાળી છે, પર્યાય તો એક સમયની છે ને, તો જે ત્રિકાળી હંમેશા ટકે છે એવા દ્રવ્યને આશ્રય લેવાનો છે, તેથી તેને મુખ્ય કરીને અને તેને નિશ્ચય કહીને તેનો જ આશ્રય કરાવવાના પ્રયોજનથી, પ્રયોજન ક્યા હૈ, ત્રિકાલી સ્વભાવ કા આશ્રય કરના હૈ, આધાર લેના હૈ, ઉસી મેં લીનતા કરની હૈ, ઇસ અપેક્ષા સે પ્રયોજનથી પર્યાય માત્રને ગૌણ કરી, યાને કોઈ ભી પર્યાય હોવે, વિકારી હોવે યા અવિકારી હોવે, વિભાવરૂપ હોવે યા સ્વભાવરૂપ હોવે, ઇન સબકો ગૌણ કરકે इसको व्यवहार कहा, अभूतार्थ कही छे। राग द्वेष छोड़ावा माटे तेवो स्वभाव मा नथी एम कयूं, या ऐसा क्यों कहा तो उसका कारण भी दिया कि राग द्वेष जो है उससे हमें दूर होना है, यानी उसको हमको निकाल बाहर करना है, तो क्या करेंगे? तो राग द्वेष छोड़ाना माटे तेवो स्वभाव नथी एम कयूं, पण तेवो पर्यायमां नथी एम क्या वात छे? धर्मात्मा पण जेटलो आत्मानो आश्रय ले छे तेटलो तेने राग ने दुख नथी, परंतु सर्वथा दुखनो अभाव एने क्या थयो छे? सर्वथा दुखनो अभाव तो तेरमा गुणस्थाने थाय छे। दशमा गुणस्थान मां पण हजु अबुद्धि पूर्वक नो सूक्ष्म राग छे अने एटलो दुख छे। ये अबुद्धि पूर्वक राग यानी क्या मालूम है बेन? अपना क्या नाम? अबुद्धि पूर्वक राग किसके? केवली के। हाँ हाँ, जो राग कर रहा हो उसको स्वयं को अपने ज्ञान में, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन कहाँ लगा है? शुद्ध उपयोग में। और हम तुम जो है हमको कंसंट्रेशन तो है नहीं, तो बुद्धिपूर्वक राग होगा क्या नहीं होगा? हाँ भाई, बुद्धिपूर्वक ही होंगे। आप क्या कहते हैं? अरे वो बोला इसलिए क्या कहते हैं डॉक्टर? हाँ, अबुद्धिपूर्वक की बात चल रही, वो भी होगा। हाँ ये बात बराबर है। हाँ सर, पहला गुणस्थान थी दसवां गुणस्थान सुधी अबुद्धिपूर्वक राग खरो। देखो मैं कहता हूं आपको, आप सो गए हो, रात को बहुत गहरी नींद लगी है और आप राग द्वेष नहीं कर रहे हो, तो आप वितराग हो जाओगे कि नहीं? तो कह दे नहीं, वितराग नहीं होंगे। क्यों? कि भाई ये वितरागता तो क्षपक श्रेणी मानने के बाद ही होगी। या तो ग्यारहवें में जाओगे तो वितराग होगे, या बारहवें में जाओगे तो वितराग होगे। अभी आप कौन से गुणस्थान में हो? सोने के गुणस्थान में, यानी विद्यास भी हो, छः छः घंटा आठ आठ घंटा सोते हो, उस समय तुम्हें राग द्वेष नहीं होता होगा, तो तुम तो निर्बंध अवस्था प्राप्त कर लोगे भैया। ऐसी बात नहीं है, ये हमें बताता है कि हमको वहां, अरे कर्म बंध रहे, और कर्म बंधने का कारण भी मोह राग द्वेष है। ये इस तरह से, हाँ हाँ हाँ, आपका पैसा पूछना है। हेलो हेलो, आपका ऐसा पूछना है कि दसवें गुणस्थान वर्ती जीव को अबुद्धिपूर्वक राग है, तो उनको उतने प्रमाण में वहाँ दुख बताया है, तो वह दुख जो है वह बुद्धिपूर्वक है या अबुद्धिपूर्वक है, ऐसा आपका प्रश्न है। तो बात ऐसी है कि वहां पर ये बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक केवल राग में ही लगेगा, यानी कषायों में आएगा, दुख में नहीं होगा। अभी ऐसा है, दुख का ज्ञान होना, अभी हमें भी यहां दुखता है तो उसका ज्ञान हो रहा है, तो अभी उनका वो कैसा है? अभी छद्मस्थ जीव है ना, तो उसका एक ही जगह उपयोग लगा है स्व में। उस समय उसको पर का ज्ञान भले होता हो, लेकिन ये राग वो ज्ञान नहीं होगा उसको, लेकिन वो दुखी है, निश्चित रूप से दुखी है, नहीं तो उसको पूर्ण वितरागी कहेंगे दसवें गुणस्थान में। अब वो उसका अनुभव कर सके या नहीं सके वो बात जुदी है, लेकिन उसको दुख तो जरूर है वहां पर। ख्याल में है ना? तो ये बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक ये तो राग में या कषायों में ही लगेंगे, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान ने जाना है वही बात वो बता रहे हैं कि उनमें अभी अबुद्धि पूर्वक राग बाकी है। अब यहाँ देखो ये राग द्वेष छोड़ाव माटे छे ने, उसमें हम तीसरी लाइन में आते हैं, सर्वता दुखनो अभाव तो तेरमा गुणस्थाने थाई छे, दसमा गुणस्थान में पण हजू अबुद्धिपूर्वक नो सूक्ष्म राग छे अने तेनु दुख छे, चौथे पांचमे छठे गुणस्थाने राग छे अने राग छे तो दुख छे, बारमा गुणस्थान में बिल्कुल राग नथी, राग नथी एटले दुख नथी, एकलू सुख छे, तेरमा गुणस्थाने अनंत सुख छे, आवी वात छे। आई तो एम वात छे के ज्ञानी ने पण पर्याय मां राग होय छे अने ते पोता थी ज होय छे, कर्मना कारणे नहीं। आई कहूं छे ने के राग द्वेष नी उत्पत्ति मां परद्रव्य नू ज कारण पनू माने छे, पोतानू काई कारण मानता नथी तेवो शुद्ध बोध विदुरः अंध बुद्धयः, शुद्ध ज्ञान थी रहित अंध छे, बुद्धि जेमनी एवा मोह नदी ने उतरी शकता नथी। आहा, जेम स्त्री ने पति मरी जाए तो ते विधवा कहवाय, ने पुरुष ने पत्नी मरी जाए तो विदुर कहवाय छे, तेम विकार कर्म थी ज थाय छे, एम जे माने छे ते कहे छे विदुर छे, बोध विदुर छे, यानी उसको ज्ञान छोड़ के गया कह रहे। आहा, विकार नी दशा परद्रव्य थी ज थवी माने ते विदुर थई गयो छे, ते सम्यक दर्शन नी पर्याय थी रंडाई गयो छे, अर्थात ते शुद्ध ज्ञान थी रहित आंधळो छे, ते संसार ने पार करी शकतो नथी। कलशिका मां एम लीधु छे के एवो मिथ्या दृष्टि जीव राशि मोह राग द्वेष रूप अशुद्ध परिणति एवी जे शत्रुनी सेना तेने मटाड़ी शकतो नथी, केवा छे ते मिथ्या दृष्टि जीवो, शुद्ध बोध विदुरांध, ये अन्य हो गया वो विदुरांध करना, बुद्ध यहा सकल उपाधि थी रहित, सकल उपाधि थी रहित जीव वस्तुना प्रत्यक्ष अनुभवती रहित होवाती सम्यक्त्वथी शून्य छे, ज्ञान सर्वस्व जेमनु एवा छे। तेमनो अपराध छो, अपराध आवो छे, तेज कहे छे के कोई मिथ्यादृष्टि जीव एवा छे कि राग द्वेष मोह अशुद्ध परिणति रूप परिणमता जीव द्रव्यना विषयमां आठ कर्म शरीर आदि नो कर्म तथा बाह्य भोग सामग्री रूप उद्गल द्रव्यनु निमित्त पामीने जीव रागादि अशुद्ध रूप परिणमे छे, एवी श्रद्धा करे छे जे कोई जीवराशि ते मिथ्यादृष्टि छे, अनंत संसारी छे, जेथी एवो विचार करे छे के संसारी जेथी एवो विचार छे के संसारी जीव ने रागादि अशुद्ध परिणमन शक्ति नथी, पुद्गल कर्म बलात्कारे ज परिणमावे छे, जो एम छे तो पुद्गल कर्म तो सर्वकाल विद्यमान छे, जीव ने शुद्ध परिणाम नो अवसर कयो, उसकी परमिशन मिले तो ही उसको शुद्ध परिणाम करने को मिलेगा, ऐसा है नहीं कहते, अर्थात कोई अवसर नथी, यानी पुद्गल कर्म ही इसको अगर कराता होगा तो गुरुदेव बहुत बार बोलते ने कर्म मोड़ा पड़ी जाए, दर्शन मोह रस्तो आपे तो आ जीव सम्यक दृष्टि था, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकेगा। आहा, शुद्ध नैनो विषय पोते निर्मलानंदनो नाथ शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु छे, एनु जेने भान नथी ते अज्ञानी जीव, पर्याय में दुख छे ते कर्म ने लईने ज छे एम माने छे, ये उसकी जो मान्यता में जो गड़बड़ है कि परद्रव्य से ही ये हो रहा है, ये बात बता रहे, पोताना ज अपराध थी राग द्वेषादि पर्याय में थाय छे એમ તે માનતો નથી. આહ, આવો શુદ્ધ જ્ઞાનથી રહિત અંધબુદ્ધિ જીવ મોહનદીને પાર કરી શકતો નથી, અર્થાત સંસાર સમુદ્રમાં અનંતકાળ ગોથા ખાય છે. અભિભાવાર્થ, શુદ્ધને નો વિષય આત્મા, અનંત શક્તિવાળો ચૈતન્ય ચમત્કાર માત્ર, નિત્ય અભેદ એક છે, તે પોતાના જ અપરાધથી રાગદ્વેષ રૂપે પરિણમે છે. એવું નથી કે જેમ નિમિત્તભૂત પરદ્રવ્ય પરિણમાવે તેમ આત્મા પરિણમે છે, અને એમ તેમાં આત્માનો કઈ પુરુષાર્થ જ નથી. આહાહા, અબદ્ધ સ્પૃષ્ટ ચિદાનંદ ઘન પ્રભુ, યે અબદ્ધ સ્પૃષ્ટ યે ક્યા હૈ બેન, જાનતી આપ? હા, પર એને અડતા નથી. ક્યા બોલ રહે આપ? હા, દેખો યહાં પર આપ બરાબર બતા રહે હૈ. इसका ऐसा है, अबद्ध और अस्पृष्ट, स्पष्ट नहीं, स्पृष्ट यानी स्पृष्ट यानी स्पर्श किया हुआ, और अस्पृष्ट यानी जिससे स्पर्श नहीं हुआ है. किससे? तो कहते हैं अन्य किसी पर पदार्थों से, उसमें शरीर लो, नो कर्म जिसको कहा, या कर्म लो, जो कुछ है, जो आत्मा से पर पदार्थ है उनसे यह आत्मा, यानी यहाँ कर्मों से बंधा नहीं है और पर पदार्थों से स्पर्शा भी नहीं गया है. ऐसा चिदानंद घन कैसा है? अबद्ध अस्पृष्ट. ये कौन सी गाथा में आया था नमिली भाई, आपको याद नहीं है? बापा को याद है. हाँ, समयसार गाथा 14 और 15 आपने बताया था. नहीं 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 नहीं, आप दोनों में कुछ बात चल रही थी ना. चलो अच्छा है. क्या कहा देखो, आहा, अबद्ध स्पृष्ट, जैसा हम कहते हैं ना अगुरु लघुत्व, तो अगुरु और अलघु. हाँ जी, हाँ यहाँ पर भी अ लगता है. और एक आता है अनादि निधन, तो वो अ दोनों जगह कॉमन लगाना है. तो चिदानंद घन प्रभु अंदर छे, ते सम्यक दर्शन नो विषय छे, अने ते शुद्ध नयनो विषय छे. ये देखो कितनी बढ़िया बात है, पर कहीं कहीं समझने में ऐसी गड़बड़ी हो जाती है. तो यहाँ जो कह रहे थे स्वामी जी, कह रहे थे ये शुद्ध नय का जो विषय है, ऐसे शुद्ध ने से कहा हुआ जो आत्मा है उसका अनुभव जिसने किया है वो सम्यक दृष्टि है. तो अभी बात तो ऐसी है कि एक ने ऐसा ऑब्जेक्शन उठाया कि नए जो होते हैं वह पूरे द्रव्य को नहीं बताते, पार्ट को बताते. एक देश है उसके, उसकी बात है. तो आप तो कहते हो कि हमारे स्वामी जी तो सम्यक दृष्टि है, तो शुद्ध नय का जो विषय है वो तो आत्मा का एक पार्ट है, पूरा आत्मा नहीं है. तो उन्होंने आधे आत्मा का ही अनुभव किया लगता है, ऐसे सटायरिकल बोलते थे. लेकिन शुद्ध नय का विषयभूत ऐसा जो आखा आत्मा है, जो शुद्ध 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 है, उसका अनुभव करना चाहिए. ये बात वह जीव नहीं मान रहा था, तो उसने स्वामी जी के ऊपर आरोप लगाया कि भाई ऐसा कैसा है. ये हम स्वयं जो शास्त्र में बात बताई गई है उसको नहीं मानेंगे, समझेंगे, मानेंगे तो झूठी बात, नहीं समझेंगे तो ऐसे अन्य ऊपर आरोप आता है. फुजूल का क्या कहा?
देखो यहाँ दो बातें बताई है, सम्यक दर्शन का विषय और ज्ञान का विषय. सम्यक ज्ञान का विषय क्या होगा? हाँ हाँ बोलो. हाँ, सम्यक ज्ञान का विषय सब कुछ है, और यहाँ क्या लिखा है? शुद्ध नय का विषय. इसमें क्या भेद है? ये तो आपने पढ़ के बताया कि ज्ञान का विषय द्रव्य गुण पर्याय है. पढ़ा है, उसका अर्थ बताओ, अभी पढ़कर भी अर्थ बताओ, यानी क्या? तो यहाँ शुद्ध नहीं का विषय क्यों कहा? यानी इसका अर्थ कुछ ख्याल में आ रहा है कि अरे समय हो गया, कल इसकी चर्चा करेंगे, बताएं इस पर ज्यादा विस्तार से बताएं।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्कर्ण मो सदा देत हो। प्रेरणा बिना